नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोकने के पीछे लगाया राजनीतिक स्वार्थ का आरोप। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। उप मुख्यमंत्री ने डलहौजी में 96 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंचायत चुनाव में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर योग्य प्रतिनिधि चुनने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोकने का काम किया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों से महिला आरक्षण की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कभी इसे लागू करने का साहस नहीं दिखाया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं को योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि परिवारवाद के आधार पर सीमित स्थान मिलता है, जबकि भाजपा में मेरिट के आधार पर महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये बिल भाजपा की विचारधारा और प्रधानमंत्री के विजन का हिस्सा है, जिसे पारित होने से रोककर कांग्रेस ने देश की महिलाओं के साथ धोखा किया है।
देश की महिलाएं जिस तरह से वो आहत हुई हैं, और मोदी जी ने स्वयं, आप सब ने कल सुना अपने टेलीविजन के टेलीकास्ट में, जिस तरह की उन्होंने वेदना प्रकट की है, मन से उनको आहत पहुंची है। क्योंकि ये जो बिल लाया गया था, ये केवल एक मात्र बिल ही नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सोच और भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों की आत्मा के साथ जुड़ा था। और हमें विश्वास है कि देश भर की महिलाएं एक मुहिम के तौर पर इस कानून के समर्थन में आएंगी, ताकि 2029 के चुनाव में इसे लागू किया जा सके।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि देश की महिलाएं इस मुद्दे को लेकर जागरूक हैं और आने वाले समय में ये एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेगा। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग है और वे किसी भी प्रकार के राजनीतिक छल को स्वीकार नहीं करेंगी। दूसरी ओर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ठोस नीतियां बनाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हर बार महिलाओं के अधिकारों को टालने और रोकने का काम किया है। सरोज पांडे ने कहा कि देश की महिलाएं इस अंतर को समझती हैं और आने वाले समय में इसका लोकतांत्रिक जवाब दिया जाएगा।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता की भावनाओं के अनुरूप जिस प्रकार के निर्णय किए हैं, ये सब निर्णय मन को छूने वाले थे और बहनें उन पर बहुत विश्वास कर रही हैं और इसलिए 2029 में ये बिल लागू होगा। हम सबका विश्वास था आने वाले समय में ये बिल लागू होगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो हम मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और ये जरूर होगा। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी तय होगा कि जब महिलाओं का साथ देने का विषय था तो कौन लोग महिलाओं के साथ खड़े थे और कौन महिलाओं के रास्ते में रोड़ा बन के खड़े थे। ये बात भी विपक्षी दलों को समय के साथ में जवाब देना होगा।
पत्रकार सम्मेलन के दौरान विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक चूक या बुनियादी ढांचे की कमी के कारण एक्सप्रेसवे खतरे का गलियारा नहीं बनना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि भारत के कुल सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा केवल 2% है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में इनका हिस्सा लगभग 30% है। न्यायालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राजमार्गों पर सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया ने आज मंडी जिला के करसोग में अतिरिक्त न्यायालय परिसर का शुभारंभ किया। इस न्यायालय परिसर के निर्माण पर करीब 6.5 करोड़ रूपये की राशि खर्च हुई है। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय परिसर का शुभारंभ होना करसोग क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं वाले इस परिसर में आम लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की करीब 96 करोड़ रूपये की 3 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किये। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में आधुनिक व सुदृढ़ पेयजल सहित स्वच्छता ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अग्निहोत्री ने कहा कि डलहौजी शहर में पर्यटन की दृष्टि से भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की 300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम जारी है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने ऊना जिला में स्वां नदी पर 37 करोड़ रुपए से बनने वाले डबल लेन पुल की भी आधारशिला रखी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंचायत चुनाव में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार चुनने का आह्वान किया है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आज टूटू क्यार सड़क के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय नेतृत्व सक्षम और योग्य होगा तो इसका लाभ संबंधित क्षेत्र को ही मिलेगा। विकास कार्यों की चर्चा करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि राज्य में सड़कों के निर्माण पर 6,000 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा रही है। राज्य सरकार के प्रयासों से जल शक्ति विभाग के 101 कार्यालय ई ऑफिस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। ये पहल विभाग को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और दक्ष बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार विभाग ने तय समय सीमा के भीतर डिजिटल बनने का लक्ष्य हासिल किया है। विभाग के सचिव अभिषेक जैन ने बताया कि इस डिजिटल परिवर्तन से समयबद्ध कार्य निष्पादन, पारदर्शिता और फाइलों की रियल टाइम निगरानी संभव हुई है। राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ भाजपा नेता सिकंदर कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल शाम दिए संबोधन को नारी शक्ति के प्रति अटूट संकल्प का प्रतीक बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि यह संबोधन स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार देश की नारी शक्ति को उनका हक दिलाने के लिए कितनी गंभीर है। सिकंदर कुमार ने प्रधानमंत्री की बात को दोहराते हुए कहा कि ये एक विधेयक की हार नहीं बल्कि विपक्ष ने महिलाओं के राजनीतिक भविष्य की भ्रूण हत्या करने का प्रयास किया है। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर आज देश सहित प्रदेश में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा जिला में भटियात विधानसभा क्षेत्र के गरनोटा में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने अन्याय व अत्याचार के विरूद्व संघर्ष कर समाज में धर्म की स्थापना की और उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक है। नाहन में भी भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने राज्य सरकार पर पालमपुर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। पालमपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा क्षेत्र की जनता से किए गए वायदे अभी भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस विधायक जल्दबाजी में योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं।
पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम को एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है तो निश्चित तौर पर फिर विकास की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। और आज जिस प्रकार से कोई समझ में नहीं आ रहा है, उद्घाटन किस बात के हो रहे, पूजन किस बात के हो रहे, 5 साल इनको मौका नहीं मिला, 1-2 दिन में अधिसूचना जारी होने वाली है तो लोगों को गुमराह करने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन मैं आपको साफ करना चाहता हूं, पालनपुर की जनता समझदार है, बार बार जो है वो इनके आगे झांसे में आने वाली नहीं है।
चंबा जिला में पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग की हस्ता हालत को लेकर भाजपा ने आज राख क्षेत्र में रोष रैली निकाली और चक्का जाम किया। भरमौर के विधायक डॉ जनकराज के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में भाजपा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सड़क की दयनीय हालत के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है लेकिन राज्य सरकार इस दिशा में उदासीन बनी हुई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सड़क के रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है लेकिन राज्य सरकार इसका सही उपयोग नहीं कर रही। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार प्रदेश को ग्रीन एनर्जी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही है। वे बिलासपुर जिला के राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बंदला कॉलेज में स्थापित 10 किलोवाट क्षमता के सोलर इंक्यूबेशन केंद्र सहित चिकित्सा शिविर का भी शुभारंभ किया। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ आज से उत्तराखंड में वार्षिक 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। गंगोत्री मंदिर के भीतर देवी गंगा की प्रतिमा और यमुनोत्री मंदिर परिसर में यमुना की प्रतिमा पूरे रीति रिवाज के साथ स्थापित की गई। मंदिरों को फूलों से सुंदर तरीके से सजाया गया है और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस बीच केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। कल शाम तक इस यात्रा के लिए 18,90,000 तीर्थयात्रियों का पंजीकरण किया जा चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोकने के पीछे लगाया राजनीतिक स्वार्थ का आरोप। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। उप मुख्यमंत्री ने डलहौजी में 96 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंचायत चुनाव में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर योग्य प्रतिनिधि चुनने का किया आह्वान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।